फिर अगली आयत में देखिए कि इसी से आगे कुछ और बात है 113 वली तस्गा इलैहिया अफइदतुल लसीना ला यूमिनून बिल आखिरा, और ऐसा इसलिए है ताकि माइल हो जाएं इसकी तरफ इन लोगों के दिल जो आखरत पर ईमान नहीं रखते। वली यरदौहु वली यक्तरिफू मा हुम मुक्तरिफून, और ताकि वो इसको पसंद भी करें और फिर वो अपने बुरे आमाल का जो भी अंबार जमा करना चाहें तो जमा कर लें। थोड़ी सी मुश्किल बात है। अब ये आयत जो है ना, इसके अंदर लफ्जी तर्जमे के लिहाज से कुछ लफ्ज़ मुश्किल हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब आप बड़े भी हो रहे हैं और आपको मुश्किल चीज़ें भी समझनी है। अल्लाह ताला कहते हैं कि ये अल्लाह का असूल क्यों है कि अल्लाह ने कुछ दुश्मन पैदा कर दिए और वो लोगों में जाके चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं और इस्लाम के खिलाफ बातें कर जाते हैं, तो अल्लाह ने ऐसा मौका क्यों दिया? क्यों दिया? इसलिए कि वो लोग ला यूमिनून बिल आखिरा, जिनके दिल में आखिरत नहीं है, दुनिया बसी हुई है ना, वो इन कच्ची पक्की बातों से दीन का रास्ता छोड़ दे। ये मतलब है। बात वैसे आप इसको एक मिसाल से समझिए, थोड़ी सी साइंस पढ़ी होगी, आपको पता है कि पानी के अंदर अगर इलेक्ट्रोलिसिस करें, इलेक्ट्रोलिसिस एक साइंटिफिक तरीक़ाकार है, पानी का इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं ना तो नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस जो होते हैं ना वो अलग अलग हो जाते हैं। हर चीज़ में नेगेटिव पॉजिटिव है, इलेक्ट्रोलिसिस से पॉजिटिव और नेगेटिव अलग हो जाते हैं। जिसको पॉजिटिव में कशिश होती है वो इधर चला जाता है, नेगेटिव को इधर हो जाती है। कभी आप लोहे के इर्द गिर्द ऐसे मैग्नेट रख के ना तो उसको हिलाएं तो जितना लोहा होता है ना वो उसके पोल्स के पास आना शुरू हो जाता है। हक और बातिल दो मुख्तलिफ पोल्स हैं, ठीक है। दुनिया में हम घुले मिले हैं, आप एक ख़ानदान को लें, आपकी चार बहनें, दो भाई, मामू, खाला, पुप्पी, हम सब ऐसे ही थे जैसे घुला मिला पानी है। खुशियों में खुश भी हो जाते हैं, नाराज़ भी हैं, दुखों में दुख हैं, चल रहा है जो मामला चलता है, ठीक है। अब ऐसे ही है, अब आप सोचिए कि हम सब एक, हमें खुद भी नहीं पता था हम कितने पानी में हैं। वल्लाह ही इस क्लास में ना बैठे तो हमें खुद भी नहीं पता चलता हम कितने पानी में हैं। हम तो खुद पिघल जाते हैं और इधर उधर जाते हैं। अब आप उस घुले मिले माहौल में थे, आपके पास कुरान का मैग्नेट आया, अब इस मैग्नेट के साथ पोलराइजेशन होगी। जिनकी तबीयत सच्ची होती है ना, जिनके अंदर फितरत सालिम है, ऊपर ज़ाहर गुनाहों का ढेर भी हो सकता है लेकिन आपका दिल सलामत है, आगे आएंगी बातें आज के सबक में, आप ना चाहते हुए भी इस किताब की तरफ आ जाएंगे, आपकी पोलराइजेशन होगी। आप कहेंगे हर कीमत पे पढ़ना है, हर कुर्बानी देनी है, होता है तो हो, नुकसान हो तो हो, जो मर्जी हो, मैंने हक को नहीं छोड़ना, आप इधर चले जाएंगे। अब कुछ लोग ला यूमिनून बिल आखिरा, वो कहते हैं छोड़ो ये बेवकूफ़ हैं, ये जज्बाती हैं, ये बातों में आगे हैं, दिस एंड दैट, वो दूसरे एज पे चले जाते हैं। नबी का वजूद या आज के दौर में किताब का आना और उसके मौके काम होना, ये सोसाइटी की पोलराइजेशन होती है। इस वक्त आप लोगों की पोलराइजेशन हो रही है। आज तक आपको पता ही नहीं था अपने भाई बहनों में कि चार भाई बहनें, पता नहीं अल्लाह के हाँ कौन सच्चा है, किसका क्या मुकाम है। अल्लाह ने आपको अपना मुकाम दिखाना शुरू कर दिया। आजकल आप देख रहे हैं कि भाई रिपेयर हो रही है। दो तीन दिन पहले मैं जब गुजरी तो मेरे साथ कोई था, तो मैंने कहा देखे कि इन दीवारों पे छेद लग रहे हैं ना, अच्छी भली दीवारें थी, अब ज़ाहिर है कि उसमें कोई ख़राबी होगी, तो आजकल वो देखे वो छेद कर रहे हैं, तो मैंने कहा हो सकता है अब इस पर टाइल लगेंगे, तो आपने देखा कि वो ऐसे ना लोहे के साथ कट 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 लग रहे हैं, कितनी ख़राब लग रही हैं। लेकिन ये क्यों कर रहे हैं? किसके बाद इसके ऊपर एक खूबसूरत सी लेयर आ जाएगी। अब क्या आएगी? वक्त आएगा तो हम भी देखेंगे। जो मेरे साथ थी साथी, मैंने उन्हें कहा कि यही आजकल आप लोगों के दिलों के साथ हो रहा है जो कुरान पढ़ रहे हैं पहली दफ़ा। इस वक्त कुरान के आयतें ना ये छेद लगाती हैं, और पिछले सबक को याद कर लें कि शुरू बीच का ईमान बड़ा खट्टा होता है, कोई नहीं मज़ा आ रहा आपको, टेस्ट ऑफ ईमान और स्वीटनेस ऑफ ईमान और हलावत ईमान कोई नहीं है। घर घर तो लड़ाइयाँ, लड़ाइयों से निकल के आते हैं, झगड़े हैं, कई सिपाहियाँ पेश करते हैं, कुछ है ये अभी खट्टा है, अभी आप कह रही हैं। जिस दिन इसके ऊपर एक खूबसूरत लेयर लगनी है ना, फिर वही बात होगी जो सूरत आल इमरान 179 में हम पढ़ चुके, हत्तयमीज़ल खबीस मिन अत्तयिब, यहाँ तक कि तय्यब से खबीस अलग हो जाए। ये होगा, ये है वली तस्ग इलैहि अफिदतुल लज़ीना ला यूमिनून बिल आखिरा। अल्लाह आपको छांट रहा है, खुश हो, मत मुंह बसोर के बैठे, मत रोए धोए बैठे। अल्लाह कहते हैं मैंने छांटना है, तुम्हारी भी जान छुट जाएगी, माशरे को गंदे अनासिर से, खराब चीजों से पाक करने के लिए अल्लाह हक का पैगाम लाता है। इम्तिहान आते हैं, तकलीफें आती हैं, आजमाइशें आती हैं, लेकिन लोग जम जाते हैं। आजकल मैंने एक जगह सीरीज शुरू की हुई है तारीख के वाक्यात की, बिलीव मी हर वाक्या सुनाने, एक तो जुमे को इधर ही सुनाया था ग्रुप लीडर्स को और उसके बाद ऑनलाइन क्लासेस में सुनाए, हैरत गुम हो जाती है इंसान की कि मेयार कैसे बदल जाते हैं। कल एक वाक्य सुनाया एक बाप के नाम पे, सैयद बिन अल मुसैब एक ताबई थे, सैयदुल ताबईन कहते हैं उनको। लंबी बात है लेकिन उसका सिर्फ एक्सट्रैक्ट बता देती हूँ तो आपको ये आयत ज़्यादा अच्छी समझ आ जाएगी। वक्त के खलीफा ने उनको कहा कि बैत करो, कोई सियासी इशू था, ये हक नहीं समझते। इन्होंने कहा मैं तुम्हारी बैत नहीं करूँगा, मैं तुम्हें नहीं मानूंगा खलीफा। उन्होंने इन पर टॉर्चर किए, इनको तकलीफ देते सख्त से सख्त, ना माने। अपने कासिदों से कहा कि बताओ क्या सैयद बिन मुसैब मार खा खा के कुछ नरम हुए? कहा मार खा के नरम क्या ना, वो तो और सख्त हो गए। मोमिन सख्त होते हैं मुश्किलात में, और फॉर्म होते हैं। कहा कोई और तरीका सोचो। कहने लगे कि सैयद बिन मुसैब की बेटी है, ऐसा करें कि आप अपने बेटे के साथ इनकी बेटी का रिश्ता मांग लें, और ये तो खुशी खुशी मानेंगे बादशाह की बेटी और एक आम बेचारा मौलवी टाइप गालिम। बेटी का बाप हो गया ना जब, तो फिर जो कहेंगे मानेगा, जो हमारे यहाँ होता जी बेटी के बाप की तो इज्जत ही कोई नहीं। खैर ये साजिश हुई। अच्छा जाओ, बेटी बड़ी अच्छी थी, नेक सूरत, पाक सीरत, खूबसूरत, हर लिहाज़ का कमी भी कोई नहीं बेटी में, तो अच्छी लड़की मिल जाएगी हमें। खैर रिश्ता कौन मांगे, डरते थे लोग दीनदारों से रिश्ते मांगते हुए कि कैसे मांगे, किस मुँह से मांगे, लोगों ने पूछना। अपना एक बड़ा ख़ास बंदा भेजा, उसने जाके सैयद बिन मुसैब से बातें बातें करके उनको बड़ा नरम किया, और फिर बातों ही बातों में कर दिया आपकी बेटी बड़ी हो रही है, क्या ख्याल है वली अहद के साथ इसका निकाह ना कर दे। ये बात सुन के सैयद बिन मुसैब की आंखों में खून उतर आया। कहा आज ये बात की है, कल ना करना, खबरदार। उनको पता था वो ऐश कोश में पड़ा हुआ शहजादा मेरी बेटी हीरा। खैर उसके बाद इनके ऊपर और सख्ती शुरू हो गई कि ना तो ये बैत कर रहे हैं, ना ये बेटी दे रहे हैं, और सख्ती हुई। अब ये अंदर से ये सोच में थे कि कहीं मुझे ये थ्रेट ना करें, मैंने किसी तरह अपनी बेटी की शादी कर दूं कहीं, ताकि ना बेटी होगी ना ये मुझे थ्रेट करेंगे। एक दिन क्या हुआ, इनके हल्का इधर से होता है, उसमें एक शख्स आता होता था, काफ़ी अरसे से वो नहीं आ रहा, लेकिन एक दिन फिर इनको दिखा। कहा भाई सुनाओ मियाँ तुम किधर थे? कहा बस क्या बताओ, मेरी बीवी पिछले दिनों बीमार थी, मैं उसकी तीमारदारी में लगा रहा, और अब चंद दिन पहले उसका इंतकाल हो गया, तो मैं इस वजह से आपके पास नहीं आ सका। कहते हैं अच्छा, अब बीवी नहीं है तुम्हारे पास? कहा नहीं है। शादी करना चाहते हो? हंसने लगा वो आदमी, कहने लगा मैं अजनबी, फोकट, मेरे पास चंद दिरहम भी नहीं, मुझे अजनबी और मुसाफिर को बीवी कौन देगा, तो मुझे किसने देना है, उसके पास तो कुछ है ही नहीं। कहा अगर मैं तुम्हें अपनी बेटी दे दूँ? खैर, कहने लगा आप मुझे देंगे कैसे हो सकते, मैं तुम्हें अपनी बेटी देता हूँ। कहा मुझे इससे बढ़ के और क्या चाहिए। वहीं उसको बिठा के चार लोगों को जमा किया, अपनी बेटी के साथ उनका निकाह पढ़ाया। ये शख्स कहते हैं कि मेरे तो पाँव खुशी से ना पड़े, लेकिन जब मैं घर आ रहा था तो मेरे दिल में गम क्या था कि मेरे पास तो बिठाने की जगह भी नहीं, करूं क्या, जाके कोई सीधा साधा मामला करूं, ताकि रुख्सती लेनी है जब तो बैठने की जगह बने। कहते घर आया, मेरा उस वक्त रोज़ा था, यानी उनका ये सब कुछ निकाह रोज़े में हो आ गया। कहते घर आया तो मेरे पास रोटी और ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल था सिर्फ, सोचा कि अच्छा यही खा लेता हूँ। इतने में दरवाज़ा नॉक हुआ, मैंने पूछा कौन, जवाब आया सईद। कहते सैयद बिन अल मुसैब के सिवा हर सईद का मैंने सोच लिया कौन सा सईद होगा, इनके बारे में तो मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि सारी ज़िंदगी इनको मस्जिद से अपने दरसगाह में और मस्जिद से घर के अलावा लोगों ने किसी के दरवाजे पे देखा ही नहीं, ये लोगों के पीछे नहीं फिरते। कहते जब उन्होंने कहा मैं सैयद अल मुसैब हूँ तो मैं घबरा गया। कहते मैंने दिल में सोचा ज़रूर इनको अपने इस जज्बाती फैसले पर अफसोस हुआ, और ये अभी सोचते आए हैं कि बेटी से मेरा जो निकाह तुम्हारा हुआ है इसको तोड़ता हूँ। कहते डरते हुए दरवाज़ा खोला, मैंने कहा सुनाइए आप कैसे इधर आ गए। कहते मुझे आज एक ख्याल आया, रात हुई तो मैंने सोचा कि तुम आज एक शादीशुदा शख्स हो, और इसके बावजूद तुम बीवी के बगैर रात बसर करो, मुझे ये गवारा नहीं, ये पकड़ो अपनी बीवी, पीछे बेटी थी। उसको कहते हैं कि अंदर धक्का दिया, यानी बेटी को अंदर किया, और बाहर से कुंडी लगा के चला गया। वल्लाह ये सच्चा वाक्य, आप पढ़ना चाहें तो इसका लिंक आपको दे दूंगी। कहते हैं कि वो बीवी जो थी मेरी बेटी उसकी, वो तो शर्म की वजह से गिर के नीचे गिर गई, मैं भी घबरा गया ये हुआ क्या। खैर कहते घर के पिछले दरवाजे से मैं छत पे चढ़ा, मैंने जाके शोर मचाया, हमसायों को जमा किया, मैंने कहा भाई लोगों मैं तुम्हें गवाह बना के कहता हूँ कि आज सैयद बिन अल मुसैब ने अपनी बेटी का निकाह मुझसे किया है, और अभी वो उसको छोड़ के वो मेरे घर में। आपको पता कि निकाह में ऐलान लाजमी है ना, कि खुदा ना खास्ता कोई इनके साथ उस लड़की को देख के बुरा ना सोचे कि क्या मामला है। तो कहते मैं तुम्हें बता दूँ वो मेरी बीवी है। ये बात कहते मैंने कही तो मेरे हमसाए में रहने वाली मेरी माँ तक भी बात चली गई, मेरी माँ और सब लोग आ गए, उन्होंने कहा खबरदार तुमने इसके पास नहीं जाना जब तक हम 3 दिन तक बनाना संवारना जो अपने काम ना पूरे कर लें। कहते 3 दिन लगाकर मेरी माँ बहनों ने उस लड़की को अपने पास रखा, और उसके बाद इस तरह से हमारी शादी हो गई। एक महीना गुजर गया घर में रहे। अब एक महीने के बाद जब ये वापस गए अपने उस्ताद जो अब उनके ससुर भी थे, तो कहते उस वक्त उनके गिर्द बहुत सारे लोग थे। जब उनके पास बहुत सारे लोगों को देखा तो उन्होंने मुझे कुछ फीलिंग नहीं दी, सलाम दो हाल है कुछ नहीं पूछा। कहते जब सब चले गए तो कहा सुनाओ मियाँ क्या हाल है। तो मैंने कहा बहुत अच्छा हाल है। कहा तुम्हारे साथी का क्या हाल है। बेटी हमारे तो भी पहले पेरे और मुकलावे और जोड़े और अल्लाह की पनाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला, ये है वो आज के दौर का जुखरफ जिसने आज हमें इस कुरान से दूर किया हुआ। कहते मैंने कहा बड़े हाल में। अच्छा कहा अच्छा अगर तुम्हें सताए ना तो उसके साथ सख्ती करना। ये बाप कह रहा है बेटी के बारे में दामाद को। और ये वाकया तो इतना ही मैंने कल सुनाया, लेकिन एक और जगह से ये मैंने पढ़ा हुआ है कि जब शादी को एक हफ्ता गुजर गया तो ये तैयार होके जाने लगे। जो इनकी बीवी थी उन्होंने पूछा आप किधर जा रहे हैं, तो कहने लगे कि आपके बाप के पास इल्म हासिल करने जा रहा हूँ। तो कहने लगी कि आप फिक्र नहीं करें, जो बाप से इल्म लेने जा रहे हैं वो सारा मैं आपको घर में बैठ के देती हूँ, मैंने अपने बाप से वो सारा इल्म लिया हुआ है। अब आप सोचिए ये बात सुन के, अब मज़ा तो आपको बड़ा आया है, लेकिन आप सोचें कि आज कितने लोग हैं जो ये करते हैं। यही तो वो वक्त है जिसके ऊपर हम पिघलते हैं। ये आज की सोसाइटी का ऐसा बड़ा ताबूत है कि जिस पे पोलराइजेशन हो ही नहीं पा रही। 4, 6, 10 आप जैसे कुरान पढ़े लोग इन चीज़ों पे जम जाएं। मैं कहती हूँ बाहर वालों को तो छोड़ दीजिए, सिर्फ कुरान से जुड़े हुए लोग छोड़ जाए तो आप देखिए सोसाइटी में चेंज आएगा। लेकिन वो जुखरुफ अल कौल सर पे सड़ा हुआ है कि जब तक ये कुछ करेंगे नहीं, बेटियां बसेंगी नहीं, शादियां होंगी नहीं, घर नहीं होगा, फिर हले मिले। कल किसी की शादी कैसी बात फैमिली की पता चली। दीनदार लोग हैं, वल्लाही दीन की बुनियाद पर रिश्ता हुआ है, और शादी में जो कुछ हुआ वो कहते हैं क्या करें मजबूरी। हत्ता कि कहते लड़का भी नहीं कह रहा था ऐसा करें, लेकिन मजबूरी है, नहीं पार्टीशन करेंगे तो जगह तंग होगी, हालांकि इतना बड़ा कमरा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला। फिर जब इन शादियों में बरकत नहीं रहती, फिर दुखी होते हैं तो फिर आके चीखते हैं कि क्या करें, हमने ये किया था वो किया। ये दो कश्तियों वाले नहीं जीते, एक कश्ती में पांव रखना पड़ेगा। तो आप मेरे और आपके लिए ये एक गोल्डन चांस है, हमें नहीं पता ये चांस हमारे पास कब तक रहेगा, लेकिन आज खुद को अलग कीजिए। आप अपने आप को अलग कर जाएंगे ना तो आप बच जाएंगे, अल्लाह ताला यही बता रहे हैं। और करें कैसे, अब आपको आयत 140 में तरीक़ाकार सिखाया जा रहा है। जब सोसाइटी आपको ऐसे तागूती और ऐसे जुखरुफ वाले सिस्टम की तरफ बुलाए तो क्या कहें, अफ़ग़ैरुल्लाहि अब्तगी हकमन, क्या मैं अल्लाह के सिवा कोई और हकम ढूंढूं, क्या तुम कहते हो मैं अल्लाह के तरीके छोड़कर दूसरों के हकम ढूंढूं। हकम पे बात हुई है ना सूरत तन्निसा में, घर का हकम। एक होता है हाकिम, वो अदालतों में होते हैं बड़े लेवल पे, हकम ऐसे पंचायत, यानी क्या मतलब मेरे रब ने मुझे जिंदगी गुजारने का इतना खूबसूरत तरीका सिखा दिया, क्या मैं इसको छोड़कर अब तुम्हारे तरीके ढूंढूं। अब ये टैक्स में ले लीजिए, तो वो मुशरिकीन मक्का को कहा जा रहा है कि तुम अल्लाह को छोड़कर 360 बुत बनाए बैठे हो, कहीं लात मनात उज्जा यऊक यहूस नसर मैं उनको पूजू, मेरा तो रब बड़ा प्यार है। किस तरह से सर्चिंग क्वेश्चन है ये कि देखो तुम अल्लाह इतने बड़े को छोड़कर तुम दूसरों के पास आते हो। वहुवल्लज़ी अंज़ला अलैकुमुल किताब मुफस्सला, और वो तो वही है जिसने तुम्हारी तरफ एक बड़ी मुफस्सल किताब नाजिल की है। सोचिए जरा क्या ये आयत हमारे लिए नहीं है। अल्लाह मुझे और आपको कह रहा है कि लोगों को कह दो क्या मैं तुम्हें मान लूं हकम, तुम्हारी सोसाइटी के गिरे पड़े निज़ाम को, घिसे पिटे तरीके को मान लूं और अल्लाह के बताए हुए तरीके छोड़ दूं। उसने मुफस्सल किताब दी, चूमने के लिए तो नहीं दी, सिर्फ इसके तावीज़ खोलने के लिए तो नहीं दी, ये बरकतों के लिए तो नहीं दी, उसने तो हर हुक्म को मुफस्सल खोल कर बयान कर दिया। आज कितने लोग हैं जो इस किताब को इस एंगल से पढ़ते हैं, ये मुफस्सल तफसील वाली, आप हैरान होते होंगे ना अहकामात सुनते हुए, इतने बारीक इशू अल्लाह ने खोल दिए। पीछे भी आप पढ़ चुके हैं, आगे सूरतों में पढ़ते जाएंगे, सूरत मायदा में कितने हुक्म गुजरे। आप बताएं अगर ये किताब सिर्फ चूमने चाटने वाली होती तो क्या ये किताब हमारे लिए इतनी गहराई में जाके पढ़ने की इसकी कोई ज़रूरत थी। तो ये जवाब है जब सोसाइटी आपको पुकारे, जब आपका ख़ानदान आपका मुआशरा आपको पुकारे। जिन्होंने मुझे ये बात कही मैंने उन्हें कहा कि देखें सीधी सी बात है, आप क्यों दुखी होते हैं, आप मत जाएं, आप अनाउंस कर दें कि हमने नहीं जाना ऐसी शादियों में। कहने लगी मुंह बांध के बैठे रहे, निकाब में गए निकाब में आ गए, फिर जब उठे तो उनको शर्म आई, तो फिर उन्होंने कहा इधर बैठ जाए तो ये कर दें तो म्यूजिक। मैंने कहा क्यों जाते हैं, आप कह दें कि जहां ये नहीं है खत्म, खत्म होगी बात। और कोई पूछे क्यों तो कह दो अफ़ग़ैरुल्लाहि अब्तगी हकमा, खुश हो ले, पोलराइजेशन हो जाए। सिर्फ वो लोग जो दिल से इन चीजों को पसंद करते हैं वो अल्लाह ही अगर वो ऐसे रस्मों रिवाज में बैठे रहें और सब दिल से बुरा समझने वाले उठ जाए ना, तो ये 4 दिन में सारे खेल खत्म हो जाएंगे। ये हम जैसे बीच के डिचकू डिचकू जो लोग हैं ना, कुरान भी पढ़ते हैं और वहां जाके मुंह गूंगे बैठे रहते हैं और खाने खाने पे आ जाते हैं, पीने पे आ जाते हैं कि चलो भाई मजबूरी है, ये बेटी का मामला। मैंने कहा ये आप जैसे लोग लोगों को मौका देते हैं, उनको क्या पता आप खुशी खुशी से बैठे हैं या रो के बैठे हैं, बीठे बैठे हैं, कैसे बैठे हैं। आप उठे बोले करें जाएं, सॉरी खुदा हाफिज, कोई ऐलान भी ना करें, बस घर वाले को बता दें मैं जा रही हूँ। उनको पता चल जाए कि ये सूट नहीं करती मुझे, ये सूट नहीं करती जगह, आई डोंट डिजर्व दिस। मेरी जैसे आप देखें, हम में से कोई सोचते कि हम किसी बार के अंदर बैठे, हम में से कोई सोचते किसी नाइट क्लब में से थोड़ी देर से गुजरे, वहां से गुजरते हुए भी शर्म आएगी कि कहीं कोई कहे ना कि अंदर से निकले हैं। तो पर आप लोगों के साथ इट डजेंट सूट्स मी, ये मेरे काबिल नहीं है जगह, ये सोफा है, ये काउच है, ये क्या, आई डोंट थिंक सो के इज फॉर मी। मैंने ये जुमला बड़े प्यार से अपनी फैमिली के एक लोगों को बताया, रियली बिलीव मी करें कि ये अगर टॉर्चर्स नहीं देंगे आप लोगों को तो ये पोलराइजेशन नहीं होगी। ये फिर वही चूचू की मलियां और बीच में चूचू के मुरब्बे बने फिर रहे हैं हम आज। इसलिए फिर हम यहाँ आके रोते हैं और वहां जाके हंसते हैं, और वो बाद में हमें बातें करते हैं, हम घर आके उनको बातें करते हैं। सीधी सी बात है। मैंने नाम दिया एक दो स्कॉलर्स है माशाल्लाह हमारी फैमिली के, मैंने कहा वो नहीं जाते शादियों में, कभी आपने देखा लोगों ने उनको बुरा कहा, लोग उनको कार्ड ही नहीं भेजते, उनको पता वो नहीं आते। सीधी सी बात है, पता चल गया भाई ये नहीं आएंगे, वो आगे पीछे जाके मिल मिला के आ जाते हैं, रिश्तेदारी भी रख लो तो गलत ना करो। तो हक को हक समझना एक बात है, हक को हक समझ कर उसका इजहार करना अगला दर्जा है, और हक को हक समझ कर उसके इजहार पे जम जाना, इसका नाम इस्तकामत है। ये तो आप हामीम सजदा में इंशाल्लाह जिंदगी रही पहुंचेंगे तो समझेंगे, लेकिन ये जुर्रत पैदा कीजिए कि अफ गैरुल्लाह अब तक ही हकमन, मेरे से नहीं कोई और हकम बनता, मुझे अपने रब पे मैं बहुत राजी हूँ। जैसे शादी हुई आपको, मैं शोहर को छोड़कर दूसरा ढूंढू, क्या बातें करते हो, अब ये बच्चे बुरे हैं कि आप दूसरों के बच्चे लूं, नहीं तो अल्लाह तो बड़ी जात है, वो तो बहुत प्यारी बात है, उसने किताब दी, इस किताब को गाइडलाइन बनाओ। वहुवल्लज़ी अनज़ले इलैकुम अल-किताब मुफस्सला वल्लज़ीन आतैनाहुम अल-किताब, और वो लोग जिनको हमने किताब दी, यालमूना अन्नहु मुनज़्ज़लुम मिन रब्बिका बिल-हक, वो जानते हैं कि ये किताब तेरे रब की तरफ से हक के साथ नाजिल हुई है, लिहाजा फला तकूनन मिनल मुमतरीन, बस तुम शक करने वालों में ना हो जाओ। ये है कॉन्फिडेंस, ज़ुख़रुफ़ल क़ौली ग़ुरूरा का ये जवाब है। आप और मैं कुरान सीखने सिखाने वालों को ये कॉन्फिडेंस हो, यस मेरे पास बेहतरीन किताब है, यस मेरे पास बेहतरीन कानून है, मेरे पास बेहतरीन तर्ज़े मुआशरत है, मईशत है, इकोनॉमिक्स है, मैं तुम्हारे सिस्टम पे क्यों जाऊँ। और ये जिस दिन हो गया, आप देखिए मुसलमान दोबारा अरूज पे आ जाएंगे, फिर वो सारा जोश आपको दोबारा दिखेगा। और सहाबा को वल्लाह ही यही यकीन था, किस तरह वो यकीन के साथ पहुंचते थे, क्योंकि उनको पता था कि हम जो करते हैं वो बिल्कुल सही करते हैं, इतना यकीन था उनको। वाक्यात सुनाने लग जाऊं, चूंकि आजकल हिस्ट्री पढ़ रही हूँ ना, तो वो सारे वाक्यात दिमाग में आते हैं। ये फर्क था हमारे और सहाबा के बीच में, वो जम जाते थे, हम पिघल जाते हैं। हमें यकीन भी है ना कि हम हक पे, हम फिर भी नहीं मनवा पाते। 4 लोगों का रिएक्शन देख के छोड़िए, 1 का रिएक्शन देख के हम अपना कानून बदलते, चले आप नहीं चाहते तो हम भी नहीं ये करते।